हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 18। इस आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण एवं अध्ययन करने से पहले गुरु और गौरंग के श्री चरणों में कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णान्तरं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपि कमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति दिशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यास सोनुमुपया मि गुरुं मुनीना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। हम श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का श्लोक नंबर 18 आज पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि हम जब भी श्रीमद्भागवत महापुराण को अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो इस श्लोक को जरूर उच्चारण करते हैं। ये प्राय हम डेली जब भी श्रीमद्भागवतम का श्लोक आप सुनते हैं तो इसके अंदर ये श्लोक होता है। तो जो चीज नित्य हमारे प्रयोग में होती है उसे हमें अच्छे तरीके से समझना चाहिए, ताकि हम उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त होता है अगर हम उसको जान के करते हैं। जान मतलब ऐसा नहीं है कि यदि हम अगर इस श्लोक को नहीं समझते हैं तो भागवत का हमें जो लाभ है वो प्राप्त नहीं होता है। लेकिन क्योंकि अगर आपको किसी चीज की वैल्यू पता होती है तो उस चीज को आप बहुत ही दिल से करते हो। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का अभ्यास कीजिए। सूची कहते हैं, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शब्दों का अर्थ देखिए, नष्ट नष्ट अर्थात खत्म हो जाते हैं। क्या खत्म हो जाते हैं? प्रायेषु, प्रायेषु का मतलब होता है प्रायः, यानी तकरीबन सारे। तकरीबन सारे मतलब 99%, है ना। तकरीबन सारे का मतलब होता है मतलब कुछ ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होते हैं लेकिन ज्यादातर हो जाते हैं। क्या क्या नष्ट हो जाते हैं? आगे कहते हैं अभद्रेशु। अभद्रेशु का क्या मतलब होता है? समस्त अमंगल, यानी कि वो सारी चीजें जो तुम्हारे लिए हानिकारक हैं, या जो आपको कष्ट पहुंचाने वाली, जो आपको दुख पहुंचाने वाली सारी बातें, जो वो अर्थ मतलब अभद्रेशु का मतलब अपराध नहीं होता है, क्योंकि अपराध तो केवल श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रवण करने की इच्छा करने से ही नष्ट हो जाते। जैसे हमने पढ़ा था ना पहले श्लोक नंबर 2 में, सद्यो रिद्य वरुद्य ते तकृति भी शुशुषु विस्तक्षणात्, खाली सुनने की इच्छा कर दो तो आपके अपराध उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, उसमें समय नहीं लगता, तत्क्षणात् एकदम। लेकिन यहाँ पर फिर कौन से अमंत्रों की बात की जाती है जिसके लिए नित्यम भागवत सेवन करना पड़ेगा? वो कौन से अपराध है, वो कौन से अभद्र हैं? वो अभद्र हैं जो हम अपने हृदय के अंदर पाल पोस के रखते हैं, अर्थात वो वासना जो हमसे अपराध करवाती है, अर्थात काम, भौतिक चीजों की ओर आकर्षण। और उस काम के कारण यदि हमें प्राप्त नहीं होता है तो उसके कारण क्रोध, और यदि प्राप्त हो जाता है तो उसके कारण लोभ, काम क्रोध। और जब मिल जाता है तो लोभ हो जाता है और उसके प्रति मोह, और मोह के बाद मद, मात्सर्य, अहंकार, ये सब हृदय के अंदर ऐसे अभद्र हैं जो बहुत ही कठिनाई से, क्योंकि ये मूल है अपराधों का। जब तक ये सब नष्ट नहीं होंगे तब तक भले हम रोजाना गंगा में स्नान करें, रोजाना तुलसी की परिक्रमा करें, लेकिन अपराध नष्ट हो जाना काफी नहीं है जब तक कि अपराध करने का मूल जड़ नष्ट न हो जाए। कहते ना कभी ऐसा होता है कि भाई ये इसकी जड़ नष्ट हो जानी चाहिए, वरना तो वापस से ये जहरीला पौधा उग जाएगा। तो ये नष्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभद्रेशु, यानी कि वो जो जड़ है, वो जो मूल है अपराध का, हृदय के अंदर जो गंदगी भरी हुई है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की, वो प्रायेशु नष्ट हो जाती है। प्रायेशु मतलब, अब इसका मतलब है कि सारे नष्ट नहीं होते हैं, कुछ बाकी रहते हैं। अब प्रायेशु लिखने की क्या जरूरत थी, नष्ट सर्वेशु भद्रेशु होना चाहिए ना। अगर सारे ही समाप्त होते तो यहाँ पर प्रायेशु नहीं लिखना होता, फिर क्या लिखना होता, सर्वेशु। तो यहाँ पर यह प्रश्न तो उत्पन्न होता ही है कि क्या सारे अभद्र जो हृदय में हैं वो नष्ट नहीं होते हैं? तो जो ऋषिगण हैं, जो टीकाकार हैं, बहुत ही सुंदर समझाते हैं। जैसे श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि नहीं, सारे अपराध नष्ट नहीं होते हैं, सारे जो अपराधों की जड़ है वो नष्ट नहीं होती है, कुछ रह जाते हैं, परंतु कुछ जो रह जाते हैं वो आपकी भक्ति में विघ्न नहीं डालते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी किसी की नेचुरली, वो नेचुरली क्रोधित होता है, मतलब वो चाहता नहीं है, या फिर नेचुरली वो किसी को है ना ऐसे शब्द बोलने का उसको होता है, नेचुरली कोई कोई उसका नेचर कभी कभी चेंज नहीं होता है। श्रवण करने से भी अंदर की जो नेचर है ना वो चेंज नहीं होती, वो बहुत हृदय से नम्र भी होता है, लेकिन है ना उसको, उसके सामने कोई गलत बात कहता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होती है, और उसको ऐसा लगता है कि ना उसको फौरन से बोल देता है वो। तो ये नेचर है, अब ये वाली नेचर खत्म नहीं होती है, या फिर कभी क्रोधित हो जाना कि कोई भक्ति में गलतियां करता है, तो वो हालांकि भक्त को भी नम्र होना चाहिए, उसको है ना किसी को इस तरह क्रोध होके नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब उसको नेचर है, उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि भक्ति में ऐसी गलती कैसे कर, माला कर रहा है वो, बीच में बात कर रहा था, थप्पड़ मार रहा उसको, मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये गलती अनबियरेबल है, उससे बर्दाश्त। लेकिन यहाँ पर श्रीपाद श्रीदत्त स्वामी समझाते हैं कि जिस प्रकार दंत विहीन सर्प होता है, जैसे सांप होता है ना, उसके दांत जहरीले होते हैं ना, वो निकाल दिए जाते हैं लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ा सा जहर बाकी रहता है, लेकिन वो जहर जो है वो आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता। इस तरह भक्ति में आने के बाद यानी नित्यम भागवत सेवा करने के बाद भी कुछ कुछ अपराध आपके कुछ कुछ ऐसा स्वभाव जो है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आपकी भक्ति में बाधा नहीं बन सकता। श्रीपाद श्रीधर स्वामी इसको और भी अत्यंत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं कि नष्ट प्रायेषु बद्रेषु का मतलब होता है कि सारे अपराध नष्ट नहीं हो रहे हैं। प्रायेषु का मतलब होता है कुछ रह जाते हैं, तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्यों क्या रह जाते हैं, तो वो साफ साफ लिखते हैं अपने टीका में कि नाम अपराध और वैष्णव अपराध। नाम अपराध, 10 नाम अपराध जानते हैं ना आप सब क्या है। सबसे पहला अपराध भक्तों की निंदा करना, ये भक्तों की निंदा करना ये बहुत खतरनाक अपराध है। ये नष्ट नहीं होगा, भगवान के समान किसी अन्य को समझना, किसी देवी देवता को समझना ये नष्ट नहीं होगा। गुरु महाराज की अवज्ञा का अपराध ये नष्ट नहीं होगा। शास्त्रों की निंदा का अपराध ये नष्ट नहीं होगा। ये अपराध जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से भी ये अपराध नष्ट नहीं होते हैं। इनसे आप बच नहीं सकते हो, तो इनसे आप छूट नहीं सकते हो, तो इनसे आपको बचना पड़ता है ना। वो अपराध जो नष्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उन अपराध से बचें, वैष्णव निंदा करने से बचें। हमें ये कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि किसी वैष्णव की निंदा करें। अब हम पहचान नहीं पाते, हमारी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर निंदा करनी ही नहीं चाहिए। निंदा तो है ना करनी ही नहीं चाहिए, भले किसी की भी नहीं करें, क्या खबर वो वैष्णव हो, हमें पता भी नहीं हो, किसी के बारे में भी नहीं बोलना चाहिए कि ये सही नहीं है या वो सही नहीं है। रहने दो ना, सब लोग जैसे भी हैं वैसे हो, हमें अपने भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कहा नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, और आगे कहा नित्यम, अत्यंत सुंदर शब्द है नित्यम। नित्यम का क्या मतलब होता है कि नियमित रूप से, सदैव। सदैव का मतलब होता है आपके पास जितना भी टाइम है उसमें आपको क्या करना है, भागवत सेवा। जितना भी समय है आपके पास, नित्यम का मतलब, नित्यम के काफी अर्थ होते हैं। जैसे हम नित्य कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई नित्य स्कूल जाता है यानी डेली, तो डेली भागवत श्रवण करना चाहिए। ऐसे नहीं सोच, समय निकालना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, कभी बोलो उनको कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो, तो साफ साफ शब्द कि हमारे पास समय नहीं है। क्या समय नहीं है आपके पास? भगवान ने ये जीवन दिया है तुमको, इसलिए दिए हैं ये 24 घंटे भगवान ने कि आप भगवान की कथाओं को श्रवण करो, भगवान के नाम का जप करो। इसके अतिरिक्त और आपके इस जन्म का कोई मूल्य नहीं है। 24 घंटों में से आप 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते भगवान की सेवा के लिए। थोड़ा समय भी निकालने के लिए आपको कहा जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो वाकई में समय ले लेंगे भगवान आपसे, बोलेंगे नहीं करते हो भगवान की भक्ति, तो फिर मनुष्य जीवन के लिए जो तुम्हें रोजाना के 24 घंटे मिलते हैं, उस 24 घंटों के तुम अधिकारी नहीं हो। हम अपना पूरा का पूरा दिन भौतिक कार्यों में इंद्रिय तृप्ति के साधन जुटाने में लगा देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त संसार के समस्त लोकों का भार भगवान ने हमारे कंधे पर डाल दिया है। केवल अपने घर को पालना, केवल अपने संतान और ग्रस्त जीवन को सही तरह से ऐसे सुव्यवस्थित करने के लिए अपना पूरा दिन लगा देते हैं और कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए समय नहीं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नित्यम भागवत सेवा, आपको बल्कि कंटिन्यूअस भागवतम श्रवण करना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जितना बन पड़े उतना समय आपको भागवत के लिए। पहले जब यहाँ से जाती है ना कोई फाइल, तो सबसे पहले देखा जाता है कि समय कितना टाइम आज मेरा वेस्ट कितना होगा श्रीमद् भागवतम का पढ़ने। अरे वो समय वेस्ट नहीं हो रहा है, वही समय यूज हो रहा है। बाकी जितना समय तुम यूज कर रहे हो अपने जीवन में, यमराज आके ये नहीं पूछेंगे कि कितना टाइम शॉप पे दिया था, यमराज आकर ये नहीं पूछेंगे कि कितना टाइम ना चैटिंग की थी मोबाइल पर या फिर फेसबुक पर, यमराज आकर यही पूछेंगे कितना समय भगवत कथा को दिया था। ये भगवान की कथा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसको समय नहीं देते हैं और कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं नित्यम, नित्यम है ना सदैव, और आगे सदैव क्या करना चाहिए, भागवत सेवया। भागवत का क्या मतलब होता है, सबसे पहले भागवत को समझना है कि भागवत कहते किससे हैं। तो शास्त्र कहता है कि भागवत दो तरह के होते, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र। एक भागवत तो वो है जो बहुत बड़ा भागवत शास्त्र है, यानी बहुत बड़ा भागवत शास्त्र मतलब 18,000 श्लोक है उसके अंदर, और उसके बाद श्री प्रभुपाद जी की कृपा से इतनी बड़ी बड़े तात्पर्य टीकाएं हैं। तो पहला भागवत तो यह शास्त्र है, ये बहुत बड़ा शास्त्र है। और दूसरा कौन सा है, आर भागवत भक्त रस भक्ति रस पात्र। आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, दूसरा भागवत कौन सा है जो भगवान की भक्ति के रस से लभालभ भरा हुआ है, जो आपको भगवान की भक्ति का रस पिला सकता है। वो भगवान का भक्त जो होता है वो चलता फिरता भागवत है। वास्तव में भक्तों अगर इन दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए कि भागवत शास्त्र महान है या भागवत भक्त महान है, तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भागवत शास्त्र से कई गुना ज्यादा भागवत भक्त है। क्यों? क्योंकि आप जब भागवत शास्त्र पढ़ते हो तो कभी आप उसमें उसको समझने में गलती करते हो, या श्लोक का उच्चारण सही नहीं करते हो, या फिर समझ नहीं पाते हो, तो भागवत शास्त्र आपको थप्पड़ मार के ये नहीं कहेगा कि ये श्लोक का मतलब इसे थोड़ी आप रॉन्ग रॉन्ग कैसे समझ रहे हो, बोलेगा नहीं बोलेगा, वो चुप करके बैठा होगा। आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, उसको पढ़ रहे हो जैसे भी पढ़ रहे हो, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन जो भागवत भक्त है वो आपको उसी श्लोक को उसी शास्त्र के उसी बात को वो इतना अच्छे तरीके से समझाता है कि आपके हृदय की समस्त अपराध समस्त जो संशय है वो नष्ट हो जाते हैं, और जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा वो सब आपको समझ में आ जाता है। और बताते नहीं ऐसे नहीं पढ़ते, इसको ऐसे पढ़ते। तो भागवत यदि समझना है तो उसके लिए कहते हैं भागवत पढ़िया भागवत स्थाने, यानी यदि भागवत पढ़ना है तो उसके लिए घर पे बैठ के अपनी मंद बुद्धि से उसको समझने का प्रयास मत करो। भागवत स्थान यानी कोई भागवत भक्त है उसी के द्वारा आपको भागवत श्रवण करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अपनी बुद्धि से आप गलत निर्णय ले सकते हो, इसलिए आपको किसी भागवत भक्त के भगवत भक्त की शरण में जाना चाहिए। इसलिए कहा नित्यम भागवत सेवया। अब सेवया के बहुत सारे अर्थ होते, सबसे पहले तो सेवया का मतलब होता है सेवन करना यानी खाना। तो कोई बेवकूफ लोग ये तो सोच सकते हैं क्या कहना भागवतम के पन्नों को निकाल के उसको बना के सब्जी बना के खाना है? नहीं, ऐसा नहीं है पकाकर उसको खा लेना। वैसे तो यही करेंगे क्योंकि समझ में तो आने वाला नहीं है, पढ़ने से तो समझ में आएगा ही नहीं, श्लोक तो पढ़ना आएंगे नहीं, तो फिर आज का बेवकूफ यही करेगा। लेकिन सेवया का मतलब ये नहीं होता है, सेवया का मतलब होता है अब जो दो भागवत है हमारे पास, एक तो यह शास्त्र है और दूसरा भागवत भक्त है, दोनों को सेवया अलग अलग तरीके से। भागवत सेवया क्या होता है, भागवत शास्त्र सेवया क्या होता है, उसको श्रवण करना है। भागवत शास्त्र को कैसे सेवन किया जाता है उसको श्रवण किया जाता है, और भागवत भक्त को कैसे सेवया किया जाता है उनकी सेवा की जाती है। वास्तव में किसी शुद्ध भक्त की सेवा कैसे की जाती है जानते हैं आप, उसकी टांगे दबा के तेल मालिश करके नहीं, बल्कि भक्त भक्त यानी भागवत भक्त की सेवा कैसे की जाती है कि उनसे श्रवण करके, उनके मुख से श्रवण करना ही उनकी सेवा है। अर्थात साधु से यही उपेक्षा करनी चाहिए, केवल यही उपेक्षा करनी चाहिए कि वो आपको कथा सुनाए, भगवान के विषय में सुनाए। आजकल हम साधु से क्या उपेक्षा करते हैं, अगर कोई साधु के पास जाता भी है तो केवल और केवल अपनी भौतिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है आप सॉल्व कीजिए, मेरा ये प्रॉब्लम है आप सॉल्व कीजिए। लेकिन वास्तव में साधु यदि आपको किसी तरह से सहयोग कर सकते हैं तो वो आपकी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि मुझे यहाँ पर पेन है, आप यहाँ पर हाथ घुमा दीजिए तो मेरा सही हो जाएगा, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आप साधु आपके आपको भगवान की कथा सुनाकर नष्ट प्रायशु भद्रेशु ये अभद्र जो आपके हृदय के अंदर घर कर चुके हैं, जिनके कारण आपको बारंबार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है, त्रयी ताप को भोगना पड़ता है, वो समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आज का मंदबुद्धि व्यक्ति केवल अपने भौतिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ही साधुओं की शरण में जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो परीक्षित महाराज को यह श्राप मिला था कि वो 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज अगर किसी को ये पता चल जाए कि 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु, बड़े से बड़ी उसको बीमारी हो जाए, तो जाके साधु को क्या बोलेगा, आप मुझे ठीक होने का कोई उपाय बताओ, है ना। हम क्या बोलते हैं, कोई तेल दे दो, कोई बबूत दे दो, कोई फल दे दो जिससे मेरा जिस्म सही हो जाए, जिससे मेरा रोग समाप्त हो जाए, ये भौतिक रोग। लेकिन परीक्षित महाराज ने ये नहीं कहा, हालांकि सुखदेव गोस्वामी समर्थ थे, वो ऐसा कर सकते थे। इवन जब अंतिम दिन आया था 7वां दिन और उन्होंने कहा था कि यदि तुम चाहो तो मैं ना तुम्हें इस मृत्यु से बचा सकता हूँ, कि जो ये अभी तुमको तंचक नांग जो ये सर्प अभी काटने आएगा वो उससे मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर तुम चाहो। तो फिर है ना परीक्षित महाराज ने कहा, नहीं, आपने मुझे भगवान की इतनी सुंदर कथा बताई है कि अब इस संसार में रहकर मैं, मुझे ऐसा दिल ही नहीं है कि इस संसार में रहूं, मैं जाना चाहता हूँ, मेरे कर्मों के अनुसार जो मुझे भोगना है वो मैं भोगना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे इस कष्ट को दूर कर दो, मेरी इस पीड़ा को दूर कर दो, उन्होंने केवल क्या कहा, मुझे सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। सदैव बोलते कि मुझे एक एक और भी सुनने का दिल कर रहा है, मुझे और स्वादु स्वादु पदे पदे एक एक क्षण में एक एक शब्द में मुझे आनंद आ रहा है। ये 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं, सूत गोस्वामी से ये नहीं कह रहे हैं कि कलयुग आ गया है, इसको खत्म करने का कोई उपाय बताओ कि हम कलयुग से, हम तो कम से कम कलयुग के अपराधों से बच जाएं, ये नहीं कहा। कहा कि हमें सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहते हैं, हम जो हमारे अब आया है नसीब में उसको भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन हम भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हैं। इन सबको छोड़ दीजिए, अर्जुन को लीजिए, उसके सामने साक्षात भगवान खड़े थे। वो युद्ध करने के लिए आया था, लेकिन जब सामने वाले दल में देखा, उसके अपने गुरु, उसके अपने पितामह, उसके अपने भाई, उसके अपने भांजे, अपने पुत्र इत्यादि खड़े थे, तो सारी हवा निकल गई और बोले कि अब तो मुझे संभला नहीं जा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा शरीर जो है वो तप रहा है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से चिरक रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, तुम कोई ऐसा इलाज करो ना कृष्णा, कुछ ऐसा करो, कोई फल दे दो मुझे या मेरे शरीर पे हाथ घुमा दो। भगवान त्रिलोकी के नाथ जो कहते हैं मया यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरा, ये प्रकृति मेरे इशारे पर चलती है, वो सामने खड़े थे। लेकिन अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मेरे इस दुख को दूर करो किसी भौतिक नाम उपचार से, क्या कहा भगवान को, कहा बोले कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्ति हम शाधिमं त्वं प्रपन्नम्। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, कृपया जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है वैसा मुझे उपदेश दीजिए, मुझे सुनाइए, मुझे बताइए। ये नहीं कहा कि मेरा कोई उपचार कर दीजिए, लेकिन आज अगर कोई कष्ट में हो, जिसका मुंह सूखा जा रहा हो, जिसके शरीर ना कंपन हो रहा हो, और उसको बैठ के आप अगर भगवद गीता श्रवण कराने के लिए बैठो, तो बोलेंगे आप चुप करो, मैं कुछ ऐसा हो ना जिससे, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। अरे भगवान की कथा आपके समस्त दुखों का नाश कर देगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, लेकिन कोई भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आज तैयार नहीं होता है। और कहते हैं कोई दुखी भी होगा ना, तो उसको जाके अगर है ना ऐसी कोई भौतिक बातें बताएंगे तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन बैठ के आप भगवद गीता के दो श्लोक पढ़ के सुना दो, उसको सुनने का दिल ही नहीं करेगा कि मुझे ये नहीं सुनना है। मतलब उसको और भी बताएंगे, हाँ भाई उसने तुम्हारे साथ ये किया, उसने तुम्हारे साथ ये किया, अभी देखो तुम्हारी बहू है तो मैं पूछ नहीं रही है, या कोई खाना नहीं लेकर आ रहा है, हॉस्पिटल में पड़े हो, या वो बात को सुनने में उसको इतना मजा आएगा। लेकिन वहीं पर बैठ के आप उसको भगवान की कथा श्रवण कराओ, भगवान का नाम श्रवण कराओ, वो उसको सुनने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आज जीव अपने हित को समझ नहीं रहा है कि मेरा क्या हित है। लेकिन साधु का सेवन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नित्यम भागवत सेवया, भागवत सेवन यानी साधु का, संत का संग करने का एकमात्र लाभ ये है कि आप उससे श्रवण करो। इसके अतिरिक्त और साधु के साथ होने का कोई, कुछ लोग अगर गुरुओं के साथ या अपने बलिष्ठ साधुओं के साथ भी होते ना, तो भी उनसे सुनते नहीं, चापलूसी करते उनकी, है ना। लेकिन श्रवण करना चाहिए, क्योंकि संघ तो उन साधुओं का खटमल भी करते हैं, मच्छर भी करते हैं, लेकिन वो लाभ कभी नहीं उठा सकते। लाभ केवल साधु का वही उठा सकते हैं जो उनकी वाणी को सुनते हैं, उनकी वाणी का सदुपयोग करते हैं, जो उनसे सुन रहे हैं उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं, केवल वही जो है वो साधुओं का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नित्यम भागवत सेवया, यानी कि भागवत कैसे सेवन करना है, दो तरीके से। भागवत ये शास्त्र, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, इस शास्त्र को तो श्रवण करना है, और जो भगवान के भक्त हैं उनकी शरण में बैठकर उनसे सुनना है, उनसे भी श्रवण। तो यदि भागवत सेवया का अगर साधा अर्थ लिया जाए तो केवल श्रवण ही आता है, लेकिन यह देखना है कि मैं जिससे श्रवण कर रही हूँ वो एज इट इज आपको बता रहा है। श्रवण ऐसा नहीं है कि वेद व्यास जी के वाक्य को बदल कर या तोड़ मरो कर। श्री रूपा जी एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मुझ में या मेरे शिष्यों में कोई अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं है। बेशक मुझ में और मेरे शिष्यों में बहुत सारे अवगुण हो सकते हैं, अपराध हो सकते हैं, लेकिन जो शास्त्र हम बता रहे हैं वो एज इट इज है, उसमें एक भी अपराध नहीं है। वो एज इट इज आपको बताया जा रहा है जिससे आपके समस्त अभद्र नष्ट हो जाएंगे। तो आगे कहते हैं नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। उसके बाद है भगवती युत्तम श्लोक, भगवती उत्तम, युत्तम लिखा हुआ ना उसका ई पहले आ जाएगा और उत्तम आगे आ जाएगा, ठीक है। भगवती उत्तम श्लोक ऐसे पढ़ेंगे। तो भगवती का मतलब होता है भगवान में, और उत्तम श्लोक का मतलब होता है कि उत्तम बहुत महान श्लोक, यानी वो भगवान जिसकी स्तुति बहुत बहुत बड़े भक्त जो है वो उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, जैसे ब्रह्मा इंद्र रुद्र इत्यादि भगवान की स्तुति करते हैं उत्तम श्लोकों के द्वारा। तो भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। भगवान के भक्तों को भी उत्तम श्लोक कहते हैं, क्योंकि वो भी है ना उत्तम श्लोकों का उच्चारण करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भगवती उत्तम श्लोक, यानी उत्तम श्लोक यहाँ पर भगवान का नाम दिया गया है। तो भगवान का क्या होगा, मतलब अगर हम नित्यम भागवत सेवाया करेंगे तो एक तो समस्त अपद्र नष्ट हो जाएंगे और दूसरा क्या होगा, भक्तिर भवति नैष्ठिकी। वास्तव में भक्तों हम भगवान की भक्ति तो करते हैं बट वो भक्ति नैष्ठिकी नहीं है, स्थाई नहीं है, अस्थाई है। भक्ति में सदैव उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी मन नहीं करता है सुबह उठने के लिए मतलब प्रभात साधना के लिए, कभी 10 माला करते हैं, कभी 4 माला करते हैं, कभी 20 माला करते हैं तो कभी 32 माला करते हैं। यानी कि भगवान की भक्ति निश्चल नहीं है, जो हमारे हृदय के अंदर भक्ति है वो कभी बढ़ती है और कभी दिल ही नहीं करता है कि हम भगवान की भक्ति करें, कभी सेवा करने का दिल नहीं करता है, कभी कभी दिल बहुत ज्यादा करता है, लेकिन हमारी भक्ति जो है वो उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो टिकती नहीं है। उसका मेन कारण क्या है कि हृदय के अंदर जो अभद्र है ना, उसके कारण कभी किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया तो वो इतना हमारे मन पे अटैक करता है कि भगवान की भक्ति करने का भी निर्णय करता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हृदय मलिन है ना, हृदय के अंदर कुछ वासनाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो हृदय के अंदर ये वासना तो नित्यम भागवत सेवया से खत्म हो जाएंगे ना, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवान भागवतम को श्रवण करने से और भागवत के द्वारा श्रवण करने से ये सारे अभद्र जो हृदय के अंदर जो भगवान की भक्ति को टिकने नहीं देते हैं। वास्तव में भक्तिर भवति नैष्ठिकी का क्या मतलब होता है, नी का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा पूरा, और टिकी का मतलब होता है टिक जाना, पूरा पूरा कंप्लीट निश्चला भक्ति आपके हृदय में भगवान की उत्पन्न हो जाती है यदि आप सदैव भागवत सेवा करते रहते हो। यानी भागवत भक्तों की सेवा करना ऐसा नहीं है, भक्तों की सेवा वैसे भी करनी चाहिए कि ना उनको, क्योंकि वो लोग अर्जित नहीं करते धन, तो उनके लिए सुविधा प्रदान करना कि उनको खाने इत्यादि का कोई ना कष्ट ना हो और उनकी उनका जीवन जो है वो अच्छे तरीके से चल सके, ताकि वो अगर स्वस्थ रहेंगे और अच्छी सुविधा उनके जीवन में होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर सकेंगे और आप सबको भगवान की कथा का रस पान करा सकेंगे। लेकिन यदि वो अपने ही उनकी बहुत सारी समस्याएं होंगी तो वो कैसे भगवाना समय निकालेंगे कि वो आपको भगवान की भक्ति का रस पिला सकें। तो उनकी दूसरी भी मतलब भौतिक भी सेवा करनी चाहिए, जो भागवत भक्त हैं, जो भगवान के इस ग्रंथ का प्रचार करते हैं उनकी सेवा उसका धर्म है। जिसे हम सुनते हैं उसकी सेवा करना हमारा धर्म है कि किसी तरह से उसको सुविधा पहुंचाएं कि ना वो अच्छे से अच्छी आपको कथा प्रोवाइड कर सके, कि वो आपको अच्छे से अच्छा भगवान के शब्दों के विषय में सुना सके। तो जिस जहाँ जहाँ जो सेंटर में हम लोग जाते हैं तो जहाँ पर जो डिवोटीज होते हैं उनके जो सीनियर डिवोटी होते हैं जो अपने कमाने का कुछ करते नहीं है, उनका सिर्फ एक ही जीवन का लक्ष्य होता है कि वो हमें भागवत पढ़ के सुनाते हैं और हम प्रचार करते हैं, तो हमारी ड्यूटी होती है उनकी सेवा करना। तो यहाँ पर भागवत सेवा या डिफरेंस मीनिंग में आता है। तो अगर ना मिलाकर देखा जाए तो यदि हम भगवान के इस श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं शुद्ध भक्तों के द्वारा तो हमारे समस्त अपराध नहीं 99% अपराध नष्ट हो जाते हैं और भगवान के श्री चरणों में हमारी नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न होती है। अनुवाद देखिए, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख पूर्णतया विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों के द्वारा की जाती है अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध स्वरूप है, यानी कि जो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जो अभद्र है हमारे हृदय में, उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का एक उपचार बताया गया कि आप अपने प्रयास से उन अभद्रों को नहीं नष्ट कर सकते। अपराध नष्ट हो जाते हैं लेकिन अपराध की जो जड़ है वो खत्म नहीं होती है, तो उसका ना यहाँ पर उपचार बताया गया है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना, यानी भगवान के जो भक्त हैं उनको भागवत का आश्रय प्रोपाद देने के भागवत की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो भागवत ग्रंथ और दूसरे भगवत भक्त। ये दोनों ही कारगर औषधियां हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाली हैं। ये श्रीमद् भागवतम और भागवत भक्त जो के आचरण है, चलता फिरता भागवत है, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं उन दोनों की संगति एक औषधि है, दवाई है जो आपके हृदय के समस्त मलिनता वाले रोगों को समाप्त कर देती है। भागवत भक्त भागवत ग्रंथ के ही समान है, क्योंकि भागवत भक्त भागवत ग्रंथ के अनुसार ही जीवन यापन करता है और भागवत ग्रंथ तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों यानी भागवतों के ज्ञान से पूर्ण ही है। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। एक भागवत आचरण है और एक भागवत शब्द रूप में है। भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भागवत भक्त को प्रसन्न करने से भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। यदि कोई शुद्ध भक्त प्रसन्न हो जाता है तभी वो हमें श्रीमद् भागवतम के विषय में बताता है, प्रसन्न करना है भागवत भक्तों को, तो फिर हमें ना उनको प्रसन्न करेंगे तो फिर हमें वो भागवतम श्रवण करने का लाभ देंगे, जिससे हमारे समस्त अभद्र समस्त अमंगलकारी जो वस्तुएं हृदय के अंदर घर कर चुकी हैं वो समाप्त हो जाएंगी। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भागवत भक्त या भागवत ग्रंथ की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्री नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाने से यह दासी पुत्र नारद देव नामक महान भक्त तथा व्यक्ति बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों को समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कुलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया श्री नारद जी का, कि उन्होंने कोई अलग से कार्य नहीं किया था। वास्तव में जैसे मैंने आपको बताया कि भागवत श्रवण करने से भी ज्यादा भगवत भक्त जो होते हैं, जो सदैव भागवत के प्रति आचरण करते रहते हैं, उनका यदि संग आपको मिल जाता है तो भागवत आप अलग से रीड करते हो तो उसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। शुद्ध भक्त के द्वारा यदि उसकी संगति में आपको श्रवण करने का अवसर मिलता है, शुद्ध भक्त की सेवा अर्थात भक्त पद दूली और भक्त पद जल, भक्त मुख अवशेष तीन महाबल। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्तों के चरण की रज प्राप्त हो जाए और भक्तों के चरणों का जल प्राप्त हो जाए और भक्तों का अवशेष यानी जूठन प्रसाद प्राप्त हो जाए ना यदि जीवन में, तो समझो कि ये बहुत बड़ा बल है जिस बल के जरिए आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बलवताम चाहम, जिसने समस्त बलवानों को बल प्रदान किया है, ये तीन महाबल। यानी कि अगर हमें भागवत का संग मिल जाता है, यानी भगवान के भक्तों का संग मिल जाता है, तो सबसे बड़े बलवान भगवान को भी हम अपनी ओर खींच सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो भगवान को भी यदि कोई काबू करने वाला है तो उसका भक्त है, और यदि भक्तों का आश्रय मिल जाता है तो भगवान दूर नहीं रहते। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि भगवान के भक्तों का मार्गदर्शन जब हमें प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है उतना ही वह भगवान की प्रेम भक्ति में स्थिर हो जाता है। अगर किसी को भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है तो दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। बस सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमको भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए। बस यदि भगवान के सामने कभी प्रार्थना करनी हो ना तो यही प्रार्थना करना कि शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो, फिर बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। क्योंकि भक्त होंगे तो हमें भक्ति करना सिखाएंगे, भक्त होंगे तो हमें जप करना सिखाएंगे, भक्त होंगे तो फिर हमें भागवतम और भगवद्गीता इत्यादि श्रवण भी करने को आसानी से मिलेगा, और हृदय के अंदर जो अपराध है वो सब समाप्त हो जाएंगे और भगवान के अंदर नैष्ठ की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो भगवान से और कुछ मांगना नहीं चाहिए, केवल भक्तों का संग ही मांगना चाहिए। उतना ही वह भगवान की, जितना जितना हम उनके मुख से सुनते जाएंगे उतना ही भगवान की प्रेम भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। अतएव भागवत ग्रंथ की कथाओं को भक्ति भावत से, भक्त भागवत से ही प्राप्त करना चाहिए। जैसे महाप्रभु कहते हैं, भागवत पढ़िया भागवत स्थाने, कि भगवान की भागवतम की कथाओं को यदि आप वाकई में सही तरीके से समझ सक समझना चाहते हो तो कोई एक भागवत भक्त ही आपको सही तरह से समझा सकता है। अतएव भागवत ग्रंथ की कथाओं को भक्ति भागवत से, भक्त भागवत से ही प्राप्त करना चाहिए, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होती है। अब न भले नए भागवत भक्त हो, लेकिन अगर आपको ये दो संगति मिल जाती है, क्या एक भागवत पुराण और भागवत पुराण भी एक भागवत भक्त की मुखावित से यदि आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है तो बहुत ही जल्दी प्रगति होती है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि भले हमारे हृदय से काम क्रोध लोभ मोह ये सब मूल से नष्ट हो जाए, लेकिन प्रकृति के जो गुण है, कौन से गुण है, जो ये भौतिक प्रकृति के तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, उनके कारण हम फिर से गुणों के अंदर जब हम जकड़े जाते हैं तो फिर गुणों गुणों शुभत्त। भगवान भगवद गीता में गुणों के विषय में बहुत बताते हैं कि गुण हमें मजबूर कर देते हैं वो कार्य करने के लिए। तो यदि हृदय के अंदर से वासना समाप्त भी हो जाए तो भी गुण तो बाकी है ना, तो गुण बाकी है तो हम अपराध फिर से करेंगे, है ना। जब भी तमोगुण होगा तो फिर तमोगुणों के कार्य करेंगे, रजोगुण होगा तो आवस इत्यादि के कार्य करने पड़ेंगे। तो इन गुणों को नष्ट कैसे किया जाए, इसका उत्तर देते हुए आगे कहते हैं, तदा रजस्तमो भावा कामलोभाय दशया कामलोभादयस्ये सीत एतैरनाविद्धिम् स्थितम सत्वे प्रसीदति। एक बार फिर से सुनिए, तदा रजस्तमो भावा कामलोभा दयश्चये सीत एतैरनाविद्धिम् स्थितम सत्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयस्ये सीत एतैरनाविद्धिम् स्थितम सत्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावा कामलोभाय दशये सीत एतैरनाविद्धिम् स्थितम सत्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयस्ये सीत एतैरनाविद्धिम् स्थितम सत्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयस्ये चेत एतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावा कामलोभाय कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा मतलब उस समय। उस समय तो किस समय, जैसे पहले हमें बताया ना कि जब हमारे हृदय के अंदर से सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं तो फिर भगवान के प्रति नैष्ठ की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो जब जिस समय नैष्ठ की भक्ति उत्पन्न हो जाती है उस समय तदमन उस समय रजस तमो भावो रजोगुण तमोगुण का भाव, रजोगुण मतलब जिसकी कारण हम कामनाएं करते हैं, इच्छा करते हैं, और तमोगुण का मतलब होता है अज्ञानता। भावा यानी परिस्थिति, काम यानी विषय भोग, लोभ मतलब लालच आदि, काम लोभादयश्च ये आदि मतलब आदि का मतलब होता है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सारे, च यानी तथा ये यानी जो भी है, जो भी जो कुछ भी है गुणों के अनुसार जो भी आ रहे हैं। चेत, चेत का मतलब होता है मन, एत है यानी इनसे, इनसे किससे, जो रजोगुण और तमोगुण के कारण जो हृदय के अंदर वासना उत्पन्न होती है, काम लालसा उत्पन्न होती है यानी लोभ और आदि इत्यादि जो भी क्रोध इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं उससे चेत एतन अनाविद्धम, अनाविद्धम मतलब प्रभावित ही नहीं होता है। हृदय के अंदर जितना भी भले कोई गुण उसको प्रभावित करने की चेष्टा करें, लेकिन हृदय क्योंकि भगवान की कथा नैष्ठिकी भक्ति के अंदर प्रेमा भक्ति के अंदर स्थिर हो गया है तो ये सब उसको प्रभावित नहीं कर सकते। क्यों, स्थितम यानी स्थित होकर सत्वे, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ही आपको अपराध करने के लिए प्रेरित करता है ना, लेकिन रजोगुण और तमोगुण आपको प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि सत्वगुण प्रसीदते यानी सत्वगुण के अंदर रहकर आप परम प्रसन्न हो जाते हो। वास्तव में रजोगुण और तमोगुण हमें इसीलिए प्रभावित करते हैं क्योंकि हम सत्वगुण में रहकर प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाते। हम भले शुद्ध सत्व में रहकर भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को प्रसाद भोग लगाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन उसमें आनंद नहीं मिल रहा है। कर तो रहे भगवान की भक्ति लेकिन आनंदित नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सत्वे प्रसीदति, प्रसीदति का मतलब होता है इससे आपको बहुत आनंद होगा, हृदय इतना प्रफुल्लित हो जाएगा कि फिर जब आप आनंद में होते हो ना फिर आपको कुछ अटैक नहीं करता। अभी आनंद क्यों नहीं आ रहा है, आनंद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक संसार की कुछ वस्तुओं में आनंद मिल रहा है और सांसारिक आनंद के कारण आनंद हृदय के अंदर जो भगवान की भक्ति है ना या भगवान के नाम जप में या कथाओं को श्रवण करने इतना आ रहा नहीं है। लेकिन यदि किसी शुद्ध भक्त से भागवतम को श्रवण करेंगे तो इतना आनंद हृदय के अंदर आएगा कि संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। फिर संसार की कोई चीज जो है ना वो हमें आसक्त में, हृदय इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, भगवान की भक्ति में इतना आनंद आ जाएगा कि भगवान भक्त भगवान को पता है क्या बोलेगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब भक्ति प्रगाढ़ आनंद देने लगती है ना तो भक्त क्या बोलता है, न धनम न जनम न सौंदर्यम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तुकी त्वये। कि ना मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, ना ही धन दौलत चाहिए, ना ही अच्छा जन्म चाहिए, मुझे जन्म जन्मांतर तक केवल आपकी भक्ति चाहिए। और भक्ति का मतलब साफ है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना और भगवान के पवित्र नाम का जप करना, क्योंकि उस भक्ति के अंदर इतना रस है। वास्तव में भगवान के पवित्र नाम में और भगवान की कथाओं में बहुत रस है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भौतिक रस से अभी जान छूटी नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। अगर आपको परम रस कभी आ जाता है, ये जो रसो वैश्य यानी रस का सागर श्रीमद भागवतम का रस जब चख लेता है ना मनुष्य, तो फिर उसको भौतिक रस तुच्छ लगने लगते हैं, एकदम उनके अंदर कोई आसक्ति नहीं रहती है। फिर वो परम आनंद परम संतोष भगवान की भक्ति में भगवान की कथाओं का श्रवण करने में। हमारे पास ज्वलंत प्रमाण है परीक्षित महाराज का, दुख का अब क्या दुख की सीमा होगी जब एक एक घंटे के बाद उन्हें पता चलता होगा कि अभी एक घंटा खत्म हो गया, अभी सिर्फ 6 घंटे और ना 23 6 दिन और 23 घंटे रह गए। उसके बाद दूसरा घंटा खत्म होता है तो बोलते हैं कि भाई अब 6 दिन और 22 घंटे रह गए हैं मेरे पास। तो उस समय दुख का क्या मतलब पराकाष्ठा होगी कि मैं अभी इतना ही समय संसार में, लेकिन वो इतना आनंदित हो रहे हैं भगवान की कथा को श्रवण करके कि उन्हें याद ही नहीं रह रहा है कि मेरी मृत्यु आएगी। और जब अंत समय वो बोलते हैं कि भले आ जाए तंचक सर्प, मुझे भले जितना भी ना मारना है तो भले मार दे, मुझे अब इतना आनंद है कि कोई कष्ट मुझे कष्टप्रद नहीं लगता है। तो ये सत्वगुण रजोगुण इत्यादि के द्वारा जो हमारे हृदय के अंदर अपराधों की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो गुण ही हमें अटैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शुद्ध सत्व में रहकर आनंदित हो जाता है भक्त। अनुवाद देखिए, जो ही हृदय में नैस्तिकम प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुणों से प्रभाव यथा काम इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। फिर आती नहीं है हृदय के अंदर इच्छा, क्योंकि गुण ही प्रभाव नहीं कर पाते हैं। तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रीपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अपनी सामान्य स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्णतः तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी या आत्मतुष्टि कहलाती है। वास्तव में जीव जो है वो आत्मा है और वो अपनी उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है कि वो सदैव आनंद में रहते, क्योंकि भगवान सच्चिद आनंदमय है। तो जीव क्योंकि भगवान का अंश है तो वो भी सच्चिद आनंदमय है, तो वो भी ब्रह्मभूत, ऐसे आता है श्रीमद् भागवतम भगवद गीता में, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। उसको तो इतना प्रसन्नता होती है भगवान की भक्ति में कि उसको किसी चीज का कोई शोक नहीं होता है और ना ही किसी चीज की कोई कामना होती है। या आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती है। भौतिक संसार में जो लोग होते हैं वो भौतिक चीजों में संतुष्टि ढूंढते हैं, लेकिन ये तो आत्मा की संतुष्टि है। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। यह सिद्धि की अवस्था नैष्ठिक की भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति कोई निष्क्रियता नहीं है, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति में आने के बाद हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो मूर्ख है, बेवकूफ है, क्योंकि भक्ति निष्क्रियता नहीं है। कार्य करना जीव का स्वभाव है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, नहीं कश्चित क्षण मति जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण के लिए भी कोई कार्य रहित नहीं रह सकता है। कार्यशीलता ही जीव आत्मा का प्रदर्शन करती है। कार्यशील होना ही जीव आत्मा का लक्षण है। शरीर यात्रा पितर चलते शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध ये अकर्मण। यदि आप कर्म नहीं करोगे तो अपनी शरीर की यात्रा को भी पूरा नहीं कर पाओगे। तो भक्ति कोई निष्क्रियता नहीं है अपितु आत्म की अनन्य सक्रियता है। भक्ति में सक्रिय रहना है, आपको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है। वो मूर्ख होते हैं जो कहते हैं कि आप भक्त बन गए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से उपमिश्रित यानी दूषित हो जाती है। अब क्योंकि आत्मा जो है वो इस भौतिक पदार्थ यानी भौतिक शरीर में आ जाती है तो दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। अब क्योंकि ये भौतिक पदार्थ यानी शरीर के अंदर काम होती है, इच्छाएं होती हैं, लोभ होते हैं, मूर्खता होती है और तमोगुण और रजोगुण का भाव होता है, इसलिए वो ये बीमार अवस्था है, रोगण कार्यकलापों का उदय। ये क्योंकि वास्तविक उसकी अवस्था क्या है कि वो प्रसन्न आत्मा है, आत्मा प्रसन्न होती है और आनंदमय होती है, लेकिन क्योंकि भौतिक शरीर के संपर्क में आती है तो वो रुग्ण होती, बीमार हो जाती है। भक्ति का प्रभाव रजो तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण द्वारा प्रकट होता है। और जब हम भगवान की नैष्ठिक की भक्ति करना, भक्ति प्राप्त हो जाती, कैसे? भागवत सेवन करने से, यानी कि भक्तों का संग करने से और भागवतम को श्रवण करने से नैष्ठिक की भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो तमोगुण और रजोगुण के इन प्रभावों को पूर्ण तरह से समाप्त कर देती है। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद पर आ जाता है। जो शुद्ध सत्व होता है ना, वो सत्वगुण से ऊपर वाली स्थिति होती है। सत्वगुण में तो क्या आप देवताओं की पूजा करते हो और है ना कुछ भक्ति करते हो उसके वेदों के अनुसार, लेकिन वो जो शुद्ध सत्व होता है ना, उसमें आप केवल और केवल भगवान की भक्ति, प्रेममय भक्ति, जिसको कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम, कुछ भी नहीं चाहिए, ना ज्ञान ना कर्म ना कुछ, बस कर्मों का फल कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसको वासुदेव स्थिति, वासुदेव पद या शुद्ध सत्व के पद को कहते हैं। केवल इसी शुद्ध सत्व अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देखता है। पश्यन्ति आत्मनि आत्मनि आत्मानम, यानी कि हृदय के अंदर भी और बाहर भी शुद्ध भक्ति जो है वो भगवान को आपके सामने प्रकट कर देती है। भक्ति सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। एक भक्त जो होता है ना, उसकी क्वालिटी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, उसके कारण किसी को भी हानि नहीं पहुंचती। अगर आप भक्त हो तो आप किसी के लिए नुकसान नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि मंगल कार्य करते हम, कोई है ना किसी को, जैसे यदि कोई ऐसा कहे कि मैं एक ऐसी औषधि बनाऊंगा जिससे कभी कोई बीमार ना हो, तो ये बहुत मंगलकारी कार्य है ना। लेकिन क्या होगा, जिसने इतनी मेहनत से डॉक्टरी की होगी, जो डॉक्टर बना होगा उसके लिए ही मंगल कार्य नहीं होगा, क्योंकि वो चाहेगा ना कि कुछ तो बीमार हो जो मेरे पास आए। लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं होगा तो उसकी सारी उसके लिए मंगल कार्य नहीं होगा। अगर कोई बोलेगा कि मैं ना सबको इतनी प्रचुर मात्रा में अनाज प्रोवाइड करूंगा, तो जितने भी किसान हैं, जो इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर है ना अनाज वगैरह ये सब बनता है और साफ होता है, वो सब उन सबका लॉस होगा, उनके लिए अमंगल होगा। लेकिन भक्त जो होता है ना, वो जो कार्य करता है वो किसी के लिए भी अमंगल नहीं होता। इसलिए कहते हैं मंगल भवन अमंगलहारी। ये जो भगवान की, क्योंकि भक्त क्या करता है, भगवान की कथाओं को श्रवण कराता है, तो जो भगवान की कथा जो भी श्रवण करता है, चाहे जो भी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, किसान हो, शूद्र हो, इवन जानवर भी होना, यदि भगवान की कथा श्रवण करने को उसके मिल जाती है तो उसके अभद्र नाश हो जाते हैं। तो उसको किसी को भी हानि भक्त के द्वारा पहुंचती नहीं है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अभक्त भले कितना ही प्रशिक्षित हो तो भी वो दूसरों को हानि पहुंचाता है। भक्त ना तो मूर्ख होता है ना कामी होता है, उसके अंदर ना मूर्खता होती है, क्योंकि वो जान गया कि जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है, और ना ही उसके हृदय में कोई इच्छा होती है, कोई लोभ नहीं होता है। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा कामी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं हो सकते। अगर कोई किसी को हानि पहुंचाता है, श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं देख लेना, यदि किसी के जरिए किसी को हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो भक्त नहीं हो सकता। भले ही वे अपने बाहरी पहनावे से अपने आप को भक्त क्यों ना विज्ञापित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु भगवत्ता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक ही होते हैं। क्योंकि भक्त का क्या कार्य होता है कि वो जी सबको सदैव भगवान के विषय में बताता, उसका काम ही एक होता है कि कैसे सामने वाले जीव को इस भावबंधन से छुड़ाकर भगवान की कथाओं का श्रवण कराए, ताकि भगवान के लिए उसके हृदय में नैष्ठिक की भक्ति प्राप्त हो सके। तो भक्त भले कितना ही मतलब छोटा होगा, लेकिन अगर वो भक्त है तो वो आपको केवल भक्त है अगर भगवान का, तो वो केवल आपके लिए ना लाभ आपको प्राप्त कराएगा। और आगे सुशीला प्रभुपाद जी यहाँ तक कह रहे हैं कि भक्त में सदैव सत्गुण होते हैं, कोई रजोगुण नहीं होता, उसके अंदर कोई तमोगुण नहीं होता, शुद्ध सत्व में टिका होता है। और भले क्वांटिटी में उसके गुण भगवान की मात्रा में बहुत कम होते हैं, लेकिन वो भगवत्ता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक ही होते हैं, उनकी क्वालिटीज एक होती है। क्योंकि भगवान का क्या स्वभाव है, सब पर कृपा करने का, और भक्त भी भले उसके अंदर इतनी क्वालिटीज नहीं होती है, भगवान के जितना उसके अंदर सामर्थ्य नहीं होता है, लेकिन उसकी इच्छा यही होती है कि सबका कल्याण हो और सबको इस भावबंधन से मुक्ति मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।